दृष्टि तथा वृत्ति परिवर्तन के लिए युक्तियां कुमारों की भक्ति में प्राण व्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य 27:4-83 आगे का भाग। सभी ने अपनी अपनी कमजोरियों को सच्चाई से स्पष्ट किया है, उस सच्चाई की मार्क्स तो मिल जाएगी, लेकिन बाप दादा देख रहे थे कि अभी तक जबकि अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आई है, विश्व परिवर्तक कब बनेंगे। अभी दृष्टा हो, दृष्टि द्वारा देखने वाले दृष्टा, दृष्टि क्यों विचलित करते हो, दिव्य नेत्र से देखते हो व इस चमड़ी के नेत्र से देखते हो। दिव्य नेत्र से सदा स्वतः ही दिव्य स्वरूप ही दिखाई देता है, चमड़ी की आंखें चमड़ी को देखती है, चमड़ी को देखना, चमड़ी का सोचना, यह किसका काम है? फरिश्तों का, ब्राह्मणों का, स्वराज अधिकारियों का? तो ब्राह्मण हो या कौन हो, नाम बोले क्या? सभी ने अपनी अपनी कमजोरियों को सच्चाई से स्पष्ट किया है, उस सच्चाई की मार्क्स तो मिल जाएगी। कमजोरियों को सच्चाई से स्पष्ट करना, इसकी भी मार्क्स है। लेकिन बाप दादा देख रहे थे कि अभी तक जबकि अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आई है, विश्व परिवर्तक कब बनेंगे। अभी दृष्टा हो, दृष्टि द्वारा देखने वाले दृष्टा, दृष्टि क्यों विचलित करते। एक है दृष्टा, एक है दृश्य, बीच में क्या है? आंखें। आंखों के पीछे जो है वह दृष्टा है, जो देख रहा है, जो दिख रहा है वह दृश्य है। बीच में आंखें हैं, आंखों से जो हो रहा है वह दृष्टि है। बाबा कह रहे हैं अभी दृष्टा हो, दृष्टि द्वारा देखने वाले दृष्टा, दृष्टि क्यों विचलित करते हो, दिव्य नेत्र से देखते हो व चमड़ी के नेत्र से देखते हो। चमड़ी के नेत्र से देखोगे तो क्या दिखेगा? चमड़ी दिखेगी। दिव्य नेत्र से सदा स्वतः ही दिव्य स्वरूप ही दिखाई देगा। दिव्य नेत्र से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? दिव्य स्वरूप। चमड़ी के नेत्र से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? चमड़ी। चमड़ी की आंखें, चमड़े की आंखें चमड़े को देखती है। चमड़ी को देखना, चमड़ी का सोचना, यह किसका काम है? फरिश्तों का, ब्राह्मणों का, स्वराज्य अधिकारियों का? तो ब्राह्मण हो या कौन हो, नाम बोले क्या? एक है दिव्य नेत्र, एक है चमड़ी के नेत्र, दो नेत्र है। चमड़ी के नेत्र से देखते ही क्या दिखाई देता है? चमड़ी दिखाई देती है। चमड़ी के नेत्र से देखने पर जब चमड़ी दिखाई देती है तो उस चमड़ी में आकर्षण भी होता है, वो चमड़ी अपने तरफ खींचती भी है। देखना, स्पर्श करना, एक के बाद एक स्टेप्स आगे आगे बढ़ते हैं। दिव्य नेत्र से देखोगे तो दिव्य स्वरूप दिखाई देगा। दिव्य नेत्र से देखना अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर देखना, चमड़ी के नेत्र से देखना अर्थात देह के संपूर्ण भान में स्थित होकर फिर देखना, तो फिर चमड़ी दिखाई देगी। जब चमड़ी दिखाई देगी तो चमड़ी का रूप दिखाई देगा और रंग दिखाई देगा। कोई अच्छा दिखाई देगा तो कोई बुरा दिखाई देगा, कोई गोरा दिखाई देगा तो कोई काला भी दिखाई देगा, कोई रूपवान दिखाई देगा तो कोई कुरूप दिखाई देगा। भिन्न भिन्न दृष्टि होगी, परंतु जब दिव्य नेत्र से देखोगे तो एक ही आत्मा दिखाई देगी। और जहां आत्मा की तरफ दृष्टि है वहां पर देह की तरफ की दृष्टि स्वतः ही कम हो जाती है, देह का आकर्षण स्वतः ही कम हो जाता है। सारा ही खेल देह और देह के आकर्षण का है, सारा ही खेल एक तरफ आत्मा और एक तरफ देह, एक तरफ आत्मा और एक तरफ देह, इनको देखने का है। तो ऐसा क्या करें जिससे चमड़ी के नेत्र से देखना बंद हो जाए और रूहानी दृष्टि आ जाए? ऑपरेशन? किसका ऑपरेशन? आंखों का ऑपरेशन और समझ का ऑपरेशन और नया चश्मा धारण करना पड़ेगा और अभ्यास और बाबा को कितना समय देखेंगे? हर समय देख सकते हैं। बाबा की दृष्टि से हम देख रहे हैं, ऊंची दृष्टि है बहुत। किसी एक व्यक्ति को उसके गुरु ने कहा, जाओ जाकर ऐसी वस्तु लेके आओ जो तुमसे भी निकृष्ट है, तुमसे भी तुच्छ है, तुमसे भी नीच है। ऐसी अगर संसार में कोई वस्तु है तो जाओ उस वस्तु को लेके आओ। व्यक्ति जाता है, ढूंढता है उस वस्तु को जो कि संसार में सबसे निकृष्ट वस्तु है, उससे निकृष्ट और कोई वस्तु नहीं है। जाता है, बहुत ढूंढता है, कुछ नहीं मिलता। अंततोगत्वा विष्टा पर उसकी नजर पड़ती है, स्टूल। सोचता है कि ये वस्तु है कि जो इस संसार में सबसे निकृष्ट वस्तु है, इसे कोई हाथ नहीं लगाता, इसे कोई छूता नहीं, इससे दुर्गंध आती है, इस पर मुखिया बैठती है, यही वस्तु सबसे निकृष्ट है। सोचता है इसी को ले जाऊंगा, और हमारे गुरु इसी की बात कर रहे थे। तो जैसे ही उसे स्पर्श करने जाता है विष्टा को, आवाज आती है विष्टा से, खबरदार मुझे स्पर्श किया तो, एक बार तुमने मुझे स्पर्श किया तो मेरा ये हाल हो गया, मैं बहुत अच्छी मिठाई थी, जैसे ही तुमने मुझे स्पर्श किया और तुम्हारे शरीर में मैं गई, मेरा ये हाल हुआ। एक बार तो तुमने स्पर्श किया तो मेरा ये हाल हो गया, अभी फिर से स्पर्श करोगे तो न मालूम मैं क्या बन जाऊंगी। इसके लिए खबरदार। व्यक्ति रुकता है, सोचता है मेरे से ज्यादा निकृष्ट संसार में कुछ है ही नहीं, ये देह भी क्या है, सबसे निकृष्ट वस्तु है। कोई खाना खाता है और झूठा छोड़ देता है, वो झूठा खाना कोई और खाता है और थोड़ा सा छोड़ देता है, वो खाना कोई और तीसरा खाता है और थोड़ा झूठा छोड़ देता है। ये देह ऐसा ही झूठन का झूठन का झूठन का झूठन है। इस देह में वही है, मल और मूत्र के अतिरिक्त इस शरीर में कुछ नहीं है, यही इस देह की वास्तविकता है। इसको केवल पैकिंग करिए ऊपर से, फिर भी फटा हुआ कपड़ा। कल परसों बाबा ने बोला था ना, ये देह क्या है? फटा हुआ कपड़ा है, फटा हुआ कागज है, फटा हुआ कागज। केवल फटा हुआ नहीं है ये कागज, गीला गीला किया गया है। वो गीला भी कोई अच्छे पानी से नहीं किया गया है, दुर्गंध आती है उस फटे हुए कागज से। फटा ऐसा है कि कोई सोचे कि इसको सिलाई करूं, जहां से सुई डालोगे कागज गीला है, जहां से सुई डालोगे वहीं से वो और फटेगा। यह इस देह की वास्तविकता है, यही इस देह का स्वरूप है। चमड़ी की आंख से देखोगे तो चमड़ी ही नजर आएगी। अगर देखना ही है तो उस चमड़ी के वास्तविक स्वरूप को देखो। क्या किया जाता है इस देह के साथ? जलाया जाता है, दफनाया जाता है, फाड़ा जाता है, डिसेक्शन होता है मेडिकल कॉलेजेस में मृत देह का। क्या डगर देह के बिना कुछ नहीं कर सकती, परंतु देह नहीं है यह अनुभव जरूर कर सकती है। जैन धर्म में एक शुभ शब्द है, कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का अर्थ वो जो लेते हैं। वास्तविक में महावीर ने जब कहा था, कायोत्सर्ग का अर्थ वो नहीं। कायोत्सर्ग अर्थात इस देह को कितना भी कष्ट हो प्रेम से सहन करना, यह अर्थ वो लोग लगाते हैं। परंतु उसका यह अर्थ वास्तविक रूप से नहीं है। कायोत्सर्ग अर्थात मृत्यु से पहले ही मृत्यु घटित हो जाए। ध्यान और मृत्यु में बहुत अधिक भेद नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं। जो घटना ध्यान मृत्यु में होती है वही घटना ध्यान में होती है। एक और चेतना है, एक और शरीर है, दोनों के बीच में एक सेतु है। ये सेतु का टूट जाना ही मृत्यु है। जैसे कोई जहाज पानी में है और किनारे से दूर दूर जा रहा है, उसी तरह चेतना इस देह से दूर दूर निकल जाए, सदा के लिए निकल जाए, वो मृत्यु है। वही अनुभव ध्यान में है। द जर्नी ऑफ नो रिटर्न इस डेथ, द जर्नी ऑफ नो रिटर्न वॉलेंटरीली इस योग, इस देह में होते हुए ही उत्सर्ग। उत्सर्ग हिंदी का बहुत ऊंचा शब्द है, त्याग, बलिदान, कुर्बानी या उसके भी ऊपर कोई अगर कर सके तो वह। कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग, काया का त्याग, देह में होते हुए ही काया का त्याग। जैसे काया है ही नहीं, काया में है परंतु काया नहीं है, काया के आकर्षण से दूर काया को अर्पण कर दिया, तत्व तत्व में चले गए हैं, हम हैं ही नहीं। और अगर काया से आइडेंटिफाई किया, गर्मी है मुझे गर्मी लग रही है, अर्थात काया की गर्मी हमारी गर्मी हो रही है, काया की ठंडी हमारी ठंडी है, काया की बीमारी हमारी बीमारी है, काया का सुख हमारा सुख है, यह है ही नहीं, इसको कैंची से ही काट दिया है, काया नीचे गिर गई, हम दूसरी ओर, हम अब अलग है, ये अलग है। यह जो घटना है जीवंत मृत्यु, जिसे बाबा मरजीवा जन्म कहते हैं, डाइंग अलाइव, वह जो घटना है वह है कायोत्सर्ग। शरीर में होते हुए भी शरीर का भान, शरीर का दर्द, शरीर का सुख, सभी के प्रति दृष्टा, मैं ये सब नहीं हूं, ये सारे ही दृष्ट है, दृश्य है, संसार में एक दृश्य है, ये देह भी दृश्य है, देह में जो हो रहा है वो सारे भी दृश्य है। इन सभी को दृश्य के मानिंद देखना, दृश्य के माफिक देखना, इसमें खुशी, इसमें सुख, इसकी सुविधा है, इसकी चैन, इसका आराम, ये सारा ही देह से संबंधित है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। यहां तक कि मन में भी जो उत्पन्न हो रहा है वो भी मैं नहीं हूं, उसका भी दृष्टा, उसके भी दृश्य, संकल्प आ रहे और जा रहे, आ रहे और जा रहे, अच्छा बुरा सबके दृष्टा, यह दृष्टा की अवस्था है। दृष्टा दृश्य से आइडेंटिफाई ना करे, दृष्टा जिससे देखा जा रहा है, जो साधन है दृष्टा के, आंखें, वो भी वो नहीं है। अगर अपने आप को आंखें भी समझा, चमड़ी भी समझा, तो वो चमड़ी की आंख चमड़ी को ही देखेगी, चमड़ी चमड़ी से आकर्षित होती है, आत्मा जो पीछे दृष्टा है, वो जब दृष्टा अपने भान में है तो दृष्टा को ही देखेगी जो कि दूसरे दृष्टा है। तो कायोत्सर्ग, संसार में जो कुछ है वास्तव में इस देह का ही विस्तार है। विदेश में एक बहुत बड़ा विचारक हुआ है, मार्शल मैकलुहान, उसका ऐसा कहना है कि संसार जो है वो देह का ही विस्तार है, एक्सटेंशन ऑफ अवर ओन बॉडीज। वो कहता है कि ये जो मकान है जिसमें यह देह है वो देह का ही विस्तार है। वो कहता है ये जो बंदूक है ये हमारे जो नाखून है बस उसी का विस्तार है, ये जो दूरबीन है ये हमारी आंखों का विस्तार है, जो कुछ इस संसार में है बस देह का विस्तार है। बहुत सूक्ष्म फिलॉसफी उसने रखी है कि जो कुछ भी है वो हमारा ही विस्तार है। यहां बैठे हुए किसी और को वहां तक मारा जा सकता है बंदूक के द्वारा, देह तक जा नहीं सकते तो हमने बंदूक की इजाद की, वो हमारे जो नाखून है नाखून वहां तक नहीं पहुंच सकते किसी को मारने के लिए, वो बंदूक जाती है की गोली जाती है और उसको मार देती है। सारा कुछ देह का ही खेल है संसार। अध्यात्म कहता है तुम यह देह ही नहीं हो, तो उसका ये जो विस्तार है संसार वो भी तुम नहीं हो, देह और उसका विस्तार। वास्तव में यह देह हमारी नहीं है, यह देह एक रीति से देखा जाए तो परमात्मा की नहीं है, यह देह इस प्रकृति की है। वायु वायु में चले जाएगी, मिट्टी मिट्टी में चले जाएगी, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में, तत्व तत्वों में विलीन हो जाएंगे। कहां जहां से आए थे वहीं इनको जाना है। डस्ट धावाट एंड टू डस्ट धाव रिटर्नेस्ट, मिट्टी तुम हो और मिट्टी में ही तुम्हें जाना है। बट दैट हैज नॉट बीन स्पोकन ऑफ द सोल, परंतु ये आत्मा के लिए नहीं कहा गया है क्योंकि आत्मा किसी भी तत्व की बनी नहीं है। आत्मा इज नॉट मेड अप ऑफ एनी एलिमेंट्स, किसी भी तत्व से आत्मा का सृजन नहीं हुआ है, इसके लिए आत्मा अलग है। देह या फिर ये संसार उस देह का ही एक्सटेंशन ऑफ अवर ओन बॉडीज इज द वर्ल्ड, ऐसी फिलॉसफी उसने रखी है। देह और देह का विस्तार, संसार देह का विस्तार है। ना तो संसार हम है, ना संसार की कोई वस्तु हम है, और ना ही यह देह हम है। इसके लिए यह भ्रांति, देह देह से जब मिलता है तो सुख प्राप्त होता है, यह भ्रांत विचार है, क्योंकि देह देह में भी विलीन नहीं हो सकता। एक तो ये विचार है, दूसरा विचार है आत्मा देह में कभी विलीन नहीं हो सकती, एक आत्मा प्रकृति में कभी विलीन नहीं हो सकती, दो आत्मा आत्मा में भी कभी विलीन नहीं हो सकती, तीन आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं हो सकती, एक दूसरा विचार है। मुख्य ये तीन विचार है कि जिससे भ्रांति उत्पन्न हुई है। पुरुष और स्त्री, स्त्री और पुरुष, पुरुष और पुरुष, स्त्री और स्त्री, कोई ये सोचे कि हमारा घनिष्ठ प्यार है और इस प्यार की अभिव्यक्ति यह देह का मिलन है, देह देह में कभी नहीं मिल सकता। अनुभव हो रहा है, मिल रहे हैं, परंतु भ्रांत अनुभव है, उससे जो सुख उत्पन्न हो रहा है वो भी भ्रांति का सुख है, क्योंकि प्रेम की अभिव्यक्ति मिलन है, परंतु वह मिलन देह का है और आत्मा भी मिल नहीं सकती ना ही देह मिल सकता है, दोनों ही एक दूसरे में कभी समान नहीं, ना तो आत्मा आत्मा में समा सकती है ना देह देह में समा सकता है। इसके लिए देह देह के मिलन से जो सुख उत्पन्न हो रहा है वह भ्रांति का सुख है, उसमें आत्मा की शक्तियां नष्ट हो रही है, क्योंकि उसमें आत्मा दृष्टा का भाव नहीं रहा है, उसमें चमड़ी का भाव है। चमड़ी चमड़ी से जब मिलेगी सुख उत्पन्न होगा, परंतु वो सुख इतना क्षणिक होगा कि उस क्षणिक सुख में के बाद वो तुरंत दुख में परिणित हो जाएगा, सुख और फिर लंबे समय तक दुख और एक पश्चाताप। आत्मा का जो सुख है वो बहुत प्रयास करने के बाद प्राप्त होता है, परंतु उसकी प्राप्ति होने के बाद वो जो टिकता है लंबा समय टिकता है और आत्मा को शक्ति से भरता है। देह देह के मिलन का जो सुख है वो सबसे पहले आत्मा की शक्ति को नष्ट करता है, पहला। जो सुख उत्पन्न हो रहा है उसके बाद वो दुख में परिणित होता है, दूसरा। तीसरा, वह सुख और उसी सुख को प्राप्त करने की अभिप्सा उत्पन्न करता है। एक बार सुख भोगा फिर से वह सुख प्राप्त करने की इच्छा, और वो इच्छा ऐसी है कि कभी भी तृप्त नहीं होती। अतृप्ति का भाव देह देह के मिलन में सदा ही बना रहता है। अतृप्ति, कितना भी भोगो और सोचो कि आत्मा आत्मा से मिल रही है, परंतु वास्तव में आत्मा आत्मा से कभी मिल नहीं सकती। सोचो कि बहुत प्यार है एक दूसरे से, देह देह से मिल रहा है, परंतु वास्तविक देह देह का मिलन कभी हो नहीं सकता, वह भी भ्रांति है। उसी भ्रांति में हर मनुष्य और हर स्त्री जीती है, जीता है, और सारी ही उम्र इसी में गुजर जाती है। परंतु वो जो सुख है वह कभी उसे प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह सुख वहां है ही नहीं। ये जो परम सुख है आत्मा का, आत्मा में स्थित होने का, उसमें स्थित होने का, वो जिसकी कभी मृत्यु घटित नहीं होती, उस तत्व में स्थित होने का जो तत्वों से परे है, वह जो सुख है देह के सुख से कई गुना अधिक है। देह का सुख वास्तव में उस सुख की एक झलक मात्र है। देह देह के मिलन से जो सुख उत्पन्न हो रहा है वो एक झलक मात्र है उस परम सुख की, हजार गुना अधिक हो जाता है। चंबी चंबी को देखती है, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। चमड़े की आंख चमड़े को देखती है। चमड़े को देखना, चमड़े का सोचना, यह किसका काम है? चमार का काम है, वरिष्ठों का, ब्राह्मणों का, स्वराज्य अधिकारियों का। तो ब्राह्मण हो या कौन हो, क्या कहलाते हो खुद को? फरिश्ते अर्थात उसके पास देह ही नहीं है, कहां से देहभान में आए? ब्राह्मण अर्थात जिनका नया जन्म हुआ है, जो द्विज है, जिन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार जिनका हुआ है, जनेऊ जिन्होंने पहना हुआ है और जिन्होंने चोटी धारण कर रखी है और श्वेत वस्त्र धारण किए है, वह ब्राह्मण है। ऐसे नया जिनका जन्म हुआ है यह ब्राह्मण, उनका चमड़ी से क्या लेना देना? सब सूक्ष्म है, स्थूल कुछ नहीं है। यहाँ चमड़ी में आसक्त होना एक ऐसा बंधन है जैसे कि कोई अंधकार में गुफा है, उसमें चले जाना। देह का सुख जो है जैसे यहाँ एक गुफा है, और उस गुफा में अंदर प्रवेश करना किसी एक दूसरे व्यक्ति के साथ, और सोचना हम दोनों मिलकर सुख की अनुभूति करेंगे, सुख की प्राप्ति करेंगे। ना तो वो सुखी कभी हो सकता है और ना ही तुम, क्योंकि चारों ओर अंधकार है, बंधन है, परतंत्रता है। तुम वहां पर गुफा में स्वतंत्र नहीं हो सकते। वो संसार केवल दो का है, उस संसार में वो दो ही है, परंतु दो भी अलग अलग, दो भी अकेले अकेले। अनुभव मात्र कर रहे हैं कि साथ है, परंतु साथ कोई नहीं है। अंधकार में गुफा में प्रवेश करते हैं और इस भ्रांति में जीते हैं कि साथ है, प्यार है, स्नेह है। अपनी वासनाओं को प्रेम की संज्ञा देते हैं। व्याकरण को भी बदलने की आवश्यकता है। इथिक्स, आत्मा किसी तत्व की बनी हुई नहीं है। इथर पावर, सिक्स एलिमेंट से भी बनी नहीं है आत्मा। सिक्स एलिमेंट ब्रह्म तत्व है, पांच तत्व यहाँ, छठवा तत्व वहाँ, जो ब्रह्म है। आत्मा और परमात्मा किसी भी तत्व से बनी नहीं है। किससे बनी है? वो शक्ति मात्र है। जैसे अगर कोई कहे इलेक्ट्रिक करंट है, किससे बना है? वो उस उसका कंटेंट क्या है? एनर्जी है वो। इलेक्ट्रिक करंट का कंटेंट क्या है? एनर्जी है वो। उसी तरह आत्मा इज नॉट समथिंग की जो पॉइंट ऑफ लाइट भी है, वो एनर्जी मात्र है, शक्ति है बस। इट्स मेटाफिजिकल, अर्थात फिजिकल वो नहीं है, पराभौतिक। पराभौतिक अर्थात मेटाफिजिकल, वो है एनर्जी है। आइंस्टाइन ने कहीं लिखा है, स्टडी ऑफ फिजिक्स हैज ऑलवेज टेकन मी टूवर्ड्स मेटाफिजिक्स। फिजिक्स का, भौतिकी का अभ्यास करते करते मैं हमेशा पराभौतिकी के पास पहुंचा हूं, मेटाफिजिक्स के पास पहुंचा हूं। तो आत्मा और परमात्मा और ये मेटाफिजिक्स का जो जगत है, वो इस देह के किसी तत्व से मिला हुआ नहीं है, बना हुआ नहीं है, ना ही उसका कोई संबंध है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, वह जिस भी चीज से वो बहेगा, आत्मा की हमने 8 शक्तियां गाई, पर 8 शक्तियां नहीं है, एक ही शक्ति है। अलग अलग शक्तियां भी नहीं है, एक ही शक्ति है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, जब वो लाइट्स में बह रहा है तो प्रकाश बन रहा है, जब फैन में जा रहा है तो वो घूम रहा है, हवा आ रही है उससे, पर वास्तव में है एक ही शक्ति। निर्णय करने की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति, सत्यता की शक्ति, ये अलग अलग शक्तियां कुछ नहीं, एक ही ईश्वरीय शक्ति है। वो पर अलग अलग रीति से अभिव्यक्त हो रही है, उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग है। एक ही शक्ति, और एक शक्ति आ जाए तो बाकी सारी शक्तियां साथ साथ आएगी। ऐसा नहीं कि ये शक्ति के अब मैं काम करूंगा और तो दूसरी नहीं आएगी, वो शक्ति आएगी तो बाकी सारी आएगी, कभी लाइट बन के प्रकाश। पर हाँ, जब मुझे गर्मी हो रही है तो प्रकाश काम नहीं देगा, फैन चाहिए। और जब अंधेरा है, मुझे कुछ पढ़ना है, तो फैन काम नहीं देगा, प्रकाश चाहिए। उसी तरह सहयोग की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, शक्तियां अलग अलग है ही नहीं, शक्ति एक ही है। आत्मा एक है और आत्मा की शक्ति भी एक है, और आत्मा किसी भी तत्व की बनी हुई नहीं है, वो एनर्जी है, ऊर्जा है। ऊर्जा किसी तत्व का बना नहीं होती, बनी नहीं होती है। तो फरिश्तों की भी देह नहीं, ब्राह्मणों का तो पुनर्जन्म है, और जो स्वराज्य अधिकारी है, जो स्वराज्य अधिकारी है, वह राजा है, स्वामी है। जो सन्यासी लोग है, वह अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? स्वामी, स्वामी लगाते हैं। स्वामी अर्थात मालिक, अर्थात राजा, मालकियत है जिनके पास, ये देह के जो स्वामी है। वो दूसरी बात है कि वो भक्तों का भी अपने आप को स्वामी बन समझने लगते हैं, या दूसरों का, पर स्वामी अर्थात स्वयं का स्वामी, इस देह का स्वामी, इस देह पर संपूर्ण मालकियत, जैसे चलाना है वैसे चलाना। संडे की मुरली, टीचर से मुलाकात, स्वभाव को जैसे बनाना चाहो बना सको, संस्कार को जैसे बनाना चाहो बना सको, देह को जैसे चलाना चाहो चला सको। जैसे बाप निर्बंधन है, उस तन में आता है और चला जाता है, तुम भी इस तन में अवतार हो, निर्बंधन हो, तन में आना और तन से चला जाना। आत्मा देह के संस्कारों से मुक्त हो, इस अवस्था को बाबा ने निर्बंधन कहा था। तो ब्राह्मण हो या कौन हो, नाम बोले क्या हो, इज्जत बजाने के लिए बोला नहीं।